VOA News, the remote, I'm Laurel Bowman. The Ethiopian Human Rights Commission is reporting on Sunday that at least 34 people were killed in a bus attack in western Ethiopia Saturday night. This comes as fear mounts of a security vacuum due to a military campaign in the north. The human rights body said the number of people killed was likely to rise after what it called a gruesome attack on the passenger bus. Meantime, the conflict between the Ethiopian federal government and Tigrayan forces in the north has escalated and now includes Eritrea. The Tigrayan forces fired rockets across the border into this neighboring country after claiming that the Ethiopian military was using an Eritrean airport as base for attacks. Ethiopia's prime minister tweeted, though, that his country is more than capable of taking care of itself. Voters in Moldova head to the polls today for a second time to cast their ballot for president. Current leader Igor Dodon is running against challenger Maia Sandu. The president has the support of Russia. Sandu is a former World Bank economist who is pushing for closer ties with the West. The challenger finished ahead of the president in the first round of voting earlier this month, propelled ahead by a late surge in voting by Moldovans living abroad. The United Arab Emirates will extend its golden visa system, which grants 10-year residency in the Gulf state, to certain professionals, specialized degree holders, and others. This is what the UAE's vice president said on Sunday. Foreigners in the UAE usually have renewable visas valid only for a few years and tied to employment. The government in the past couple of years has made its visa policy more flexible, offering longer residencies for certain types of investors, students, and professionals. High school students living in the UAE who rank top in the country and students from certain universities with a GPA of 3.8 or higher can also apply for the Golden Visa. This is VOA News. China and 14 other countries agreed Sunday to set up the world's largest trading bloc, encompassing nearly a third of all economic activity, in a deal many in Asia are hoping will help hasten a recovery from the shocks of the pandemic. The Regional Comprehensive Economic Partnership was signed virtually on Sunday on the sidelines of the annual summit of the 10-Nation Association of Southeast Asian Nations. The accord will take already low tariffs on trade between member countries still lower over time. The United States and Israel tracked and killed a senior al-Qaeda operative in Iran earlier this year, in a bold intelligence operation that came as the Trump administration was ramping up pressure on Tehran. Four current and former U.S. officials say the operative, Abu Muhammad al-Masri, who is al-Qaeda's number two, or was killed by assassins in the Iranian capital in August. Two of the officials, one current and one former, say Israeli agents carried out the operation. Two others say Israel had been involved in surveillance, but could not say definitively who pulled the trigger when al-Masri was gunned down in an alley in Tehran on August 7th. The United States set a new record of daily coronavirus infections with nearly 200,000 cases as the number of cases nears 11 million. Due to the record highs, the average daily increase of coronavirus infections in the U.S. has exceeded 132,000 over a seven-day period. U.S. Secretary of State Mike Pompeo says he discussed global challenges with a handful of members of a Paris think tank at the start of a seven-country tour of Europe and the Middle East. His travels could produce awkward moments since nations on his schedule have all congratulated projected President-elect Joe Biden for winning the White House. Pompeo's trip is aimed at shoring up the priorities of the outgoing Trump administration. At the same time, neither President Donald Trump nor Pompeo have accepted the results of the U.S. election. British Prime Minister Boris Johnson plans to announce next week a ban on the sale of new petrol and diesel cars from 2030, 5 years earlier than previously planned, according to the Financial Times. Britain had originally planned to ban the sale of new petrol and diesel-powered cars from 2040 as part of efforts to reduce greenhouse gas emissions. And in February, Johnson brought this forward to 2035. Citing unidentified industry and government figures, the FT said Johnson now intended to move the date forward again to 2030 in a speech on environmental policy he is expected to give next week. Via remote, Laurel Bowman, VOA News. We'll be right back.
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کی راؤنڈ ٹیبل، میں ہوں یاسمین جمیل۔ امریکی انتخابات ہماری آج کل کی راؤنڈ ٹیبلز کا موضوع ہیں اور آج کا پروگرام بھی اسی حوالے سے ہے، اور حوالہ ہے امریکی تارکین وطن اور امریکی انتخابات۔ امریکہ میں دنیا بھر سے تارکین وطن یہاں آتے ہیں، جو بہتر معاش، بہتر تعلیم اور بہتر زندگی کے لیے یہاں آتے ہیں، اور پھر وہ یہاں کے شہری بنتے ہیں، ووٹ کا حق حاصل کرتے ہیں اور اس حق کو استعمال کر کے امریکی سیاست، معیشت اور معاشرت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم یہی بات کریں گے کہ اس بار امریکی انتخابات میں تارکین وطن کا رول کیا رہا، اور انہوں نے کس طرح اور کیوں غیر معمولی طور پر جوش و خروش سے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ اور ہم یہ بات بھی کریں گے کہ امریکہ، جسے تارکین وطن کی سرزمین یا لینڈ آف اپرچونیٹیز یا مواقعوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، اس میں تارکین وطن کس طرح یہاں میسر مواقعوں کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے پرانے خوابوں کو بھی تکمیل کرتے ہیں اور نئے خواب بنتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنے آبائی ملکوں کے لوگوں کے خوابوں کو بھی پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں۔ اور ہم یہ بات بھی کریں گے کہ اس تمام سفر میں انہیں کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور وہ ان سے کیسے نمٹتے ہیں۔ تو آپ کو بتا دیں کہ ہماری آج کی راؤنڈ ٹیبل میں ہمارے مہمان کون ہیں، کون ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں سیٹل یونیورسٹی اسکول آف لا کے پروفیسر آف لا اور ڈائریکٹر سینٹر فار گلوبل جسٹس پروفیسر طیب محمود، جو ایک عرصے سے امریکی نوجوانوں کو قانون اور انصاف کی تعلیم دے رہے ہیں اور امریکی میڈیا کے مختلف پروگراموں میں قانون کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ہیوسٹن ٹیکساس کے ایک ریپبلکن اور سابق کونسل ممبر اور اسلامک سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن کے سابق صدر مسرور جاوید خان، یا ایم جے خان، جو ایک پروفیشنلی تو ایک انجینئر ہیں لیکن امریکی سیاسی دھارے میں ایک عرصے سے شامل ہیں اور اپنی مسلم اور پاکستانی امریکی کمیونٹی کو امریکہ کی مین اسٹریم میں لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں کیلیفورنیا سے ٹیکنالوجی کی ایک انٹرنیشنل کمپنی کے فاؤنڈر اور سی ای او زلقی خان، جو ٹیکنالوجی کی ایک انٹرنیشنل کمپنی کے فاؤنڈر اور سی ای او ہیں، جن کی کمپنی نئی ٹیکنالوجیز کے پروجیکٹس ڈیزائن کرتی ہے، ڈیولپ کرتی ہے، مثلا آئی فون، آئی پیڈز، کنڈل فائر، کینسر کی تشخیص اور شوگر لیول کے مانیٹرنگ کے آلات وغیرہ۔ جبکہ انہوں نے ایک ٹرسٹ قائم کیا ہے جو پاکستان میں غریب لوگوں کو چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے بلا سود مائکرو لونز دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں نارتھ امریکہ میں پاکستانی انٹرپرینیورز کی تنظیم اوپن کے شکاگو چیپٹر کے صدر حارث احمد۔ اوپن جو ہے وہ امریکہ بھر میں پاکستانی امریکیوں کی وہ تنظیم ہے جو پاکستانی امریکی بزنس کمیونٹی میں انٹرپرینیورشپ اور انوویشن کو فروغ دیتی ہے، اور یہ کام وہ پاکستان میں بھی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مینجمنٹ سے متعلق ایک گلوبل لیول کی مشاورتی کمپنی کے فاؤنڈر اور سی ای او ہیں، اور آج کے پروگرام میں ان کی شرکت کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے پاکستانی امریکن فار بائیڈن کے ایک نیشنل انیشیٹو کی قیادت بھی کر چکے ہیں، اور ایک کمیونٹی لیڈر کے طور پر پاکستانی امریکیوں کو سیاسی دھارے میں شامل ہو کر ایک رول ادا کرنے پر آمادہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں نارتھ کیرولائنا سے ایک ڈیٹا سائنٹسٹ غزالہ صادق، جو ایک امیگرینٹ کے طور پر یہاں آئیں اور یہاں آباد دوسری تارکین وطن خواتین کی طرح یہاں جو مواقع دستیاب ہیں ان سے فیض یاب ہو کر ایک کامیاب زندگی گزار رہی ہیں اور اپنی صلاحیتوں سے اس ملک کی معیشت اور معاشرت میں ایک رول ادا کر رہی ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا پینل، اور گفتگو کا آغاز ہم کریں گے حارث احمد صاحب، آپ سے، شکاگو سے آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ حارث احمد صاحب، آپ بتائیے کہ اس بار امریکی انتخابات میں تارکین وطن کا کیا رول رہا، اور خاص طور پر پاکستانی امریکیوں نے کس جوش و خروش سے حصہ لیا اور کیوں؟ جی حارث صاحب،
السلام علیکم یاسمین صاحبہ، شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا۔ تو یہ اس دفعہ بہت ہی میرے لیے تو بہت ہی ایکسائٹنگ پروسیس تھا کہ پچھلے تین مہینوں میں جس طرح پاکستانی امریکن کمیونٹی نے ایک انٹرسٹ شو کیا ہے سیوک انگیجمنٹ میں، اس الیکشن پروسیس میں، تو اس کا آغاز ہم نے ایکچولی 14 اگست کو کیا تھا۔ 14 اگست کو ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم एक प्रेसिडेंशियल लेवल इलेक्शन में देयर वाज ए टाउन हॉल जिसमें हमने अपनी कम्युनिटी को शोकेस किया कि किस तरह पाकिस्तानी अमेरिकन इस सोसाइटी में क्या रोल अदा करते हैं और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं. तो एक पैनल उसमें कोविड का था जिसमें डॉक्टर्स ने प्रेजेंट किया कि किस तरह वो इस डिजीज को फाइट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिकन पीपल. देयर वाज ए पैनल ऑन रेशियल जस्टिस टू शो कि हम किस तरह हमारा क्या रोल हो सकता है इसमें और जो हमारी इंटरनल रेसिज्म है हमारी कम्युनिटी में उसको किस तरह एक्सपोज करें. और फिर एक कंपोनेंट था जिसमें कुमेल नंजियानी आप लोगों को बताते होंगे एक बहुत फेमस हॉलीवुड एक्टर हैं जो कराची से हैं. उन्होंने फिर वो एक प्रेजेंट किया कि ये आर्ट्स की दुनिया में जो हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो क्या रोल अदा करें. तो उस 14 अगस्त के टाउन हॉल के बाद एक प्रोसेस इनिशिएट हुआ और मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं. हम इन्वॉल्व हुए हैं इन फोन बैंकिंग में. फोन बैंकिंग में ये होता है कि पाकिस्तानी अमेरिकन वोटर्स को फोन करते हैं और वो उनसे दरियाफ्त करते हैं कि उनका क्या प्लान है इस इलेक्शन में वोट देने का और अगर वो वोट देना चाह रहे हैं. ये सारी इनिशिएटिव हमने डेमोक्रेटिक पार्टी के बेसिस पे किए थे. तो एक इदारा बना था ये इट्स कॉल्ड पाकिस्तानी अमेरिकन इनिशिएटिव अंडर द एशियन अमेरिकन अम्ब्रेला जिसका नाम एपी कहलाता है एशियन अमेरिकन पैसिफिक आइलैंडर उसके अम्ब्रेला के अंदर ये उसके जिम्न में हमने ये काम किया. और हमने ये इस दफा मैं नोट किया मैं इस मुल्क में 30 साल से हूँ कि जो एक्साइटमेंट और पैशन इस दफा हमने देखा पाकिस्तानी कम्युनिटी का वो मैंने तो कभी ऑब्जर्व नहीं किया था. और लोगों ने बहुत अपना टाइम दिया है वॉलंटियर किया है फोन बैंकिंग में और दीगर चीजों में पोलिंग स्टेशन में इन्वॉल्व हुए. तो हमें तो ये फील हो रहा है कि इस दफा एक ये शिफ्ट हुआ है हमारी कम्युनिटी का जो समटाइम्स हम लोग इतने इन्वॉल्व नहीं होते थे इन चीजों में. कुछ लोग होते थे लेकिन एज अ ब्रॉडर कम्युनिटी नहीं होते थे. और वो ये इस दफा हमने ये ऑब्जर्वेशन देखी है कि ये इन्वॉल्वमेंट रही है. और जो स्टैटिस्टिक्स आएंगे इस इलेक्शन के बाद आई एम श्योर कि वी विल सी कि हमारी इस मुल्क में नंबर्स जो हैं वो 750,000 से 1 मिलियन का रेंज दिए जाती है कि हमारी कम्युनिटी है. और आई एम श्योर अ हाई परसेंटेज ऑफ दैट पॉपुलेशन इस इलेक्शन में हिस्सा लिया.
ठीक, तो बेहद शुक्रिया हारिस साहब. और अब गुफ्तगू में शामिल करते हैं एमजे खान साहब को जो ह्यूस्टन टेक्सास से हमारे साथ हैं. एमजे खान साहब आप एक रिपब्लिकन हैं लेकिन आप देख चुके हैं कि अमेरिका के जो साबिक इंतखाबात रहे उनमें पाकिस्तानी अमरीकियों का ज्यादातर झुकाव डेमोक्रेट्स की तरफ रहा. लेकिन इस बार जहां दूसरी बहुत सी मुनफरिद बातें हुई और गैर मामूली बातें नजर आई इंतखाबी प्रोसेस में वहां ये भी देखने में आया कि पाकिस्तानी अमरीकियों की एक खासी बड़ी तादाद सर ट्रंप के लिए वोट डालती और काम करती दिखाई दी. तो ऐसा क्यों हुआ और कैसे मुमकिन हुआ ये?
जी पहली बात तो ये बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने का. सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तानी कम्युनिटी अब माशाल्लाह बहुत मैच्योर कम्युनिटी है यहाँ पे अमेरिका में. और ये सही है कि उन्होंने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए डेमोक्रेटिक साइड पे वोट दिया था. मगर इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि बहुत सी जगहों में उन्होंने कांग्रेस में या सेनेटर के लिए उन्होंने दूसरी पार्टी के लोगों को चूज किया. यहाँ पे ह्यूस्टन में एक इलेक्शन बहुत क्लोज इलेक्शन था जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी का मेजर कंट्रीब्यूशन था रिपब्लिकन कैंडिडेट के लिए और रिपब्लिकन कैंडिडेट पाकिस्तानी वोट की वजह से जीत गए. तो ये सही है कि ज्यादातर पाकिस्तानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डेमोक्रेटिक वोट डाल रहे हैं मगर ये कि कुछ दूसरी सीटों पे पाकिस्तानियों ने रिपब्लिकन को भी सपोर्ट किया.
तो जो मुसलमान तारकीन वतन है उनके बारे में भी ये देखने में आया या सुनने में आया हो सकता है कयास आ रही हो कि उन्होंने भी इस मरतबा रिपब्लिकन पार्टी को ज्यादा वोट दिए जबकि उमूमी तौर पर रिवायती तौर पर वो डेमोक्रेट्स को वोट देती थी. इस बारे में आपका क्या ख्याल है?
जी मुसलमान कम्युनिटी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरह बड़ी डाइवर्स कम्युनिटी है. मुसलमानों में हर तरह के लोग हैं अमीर भी हैं गरीब भी हैं प्रोफेशंस भी हैं बिजनेसमैन भी हैं और पॉलिटिकली भी बहुत डाइवर्स कम्युनिटी मुसलमानों की. तो उन्होंने भी अपने वोट जो है वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में हो सकता है झुकाव उनका मुसलमानों का जनरली डेमोक्रेट्स की तरफ हो मगर दूसरी सीटों पर मुसलमानों ने जनरल जो है बड़ा सोच समझ के वोट दिया है. मेच्योर कम्युनिटी है मुसलमानों की اور مسلمان کمیونٹی کی ایک جنرل بات یہ ہے, اور یہ پاکستانی کمیونٹی پہ بھی کسی حد تک لاگو ہوتی ہے, کہ ہماری لائلٹی جو ہے پارٹی کے ساتھ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ جس میں ہم ہر چیز بھول کے صرف پارٹی لائلٹی کے لیے ووٹ دیں, ہم ایشوز کے اوپر ووٹ ڈالتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو کہ ہمارے ایشوز پہ ہمارے ساتھ موافقت رکھتا ہے تو ہم اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالیں گے ریگارڈلیس کہ ان کی پارٹی افیلیشن کیا ہے. اور پریزیڈنشل الیکشن میں بھی دیکھیں, جب بور اور گور اور بش کا الیکشن ہوا تھا تو پاکستانی کمیونٹی نے, مسلمان کمیونٹی نے ریپبلکن جارج بش کو ووٹ ڈالے تھے, اور آگے بھی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی اور مسلمان کمیونٹی کینڈیڈیٹ کو دیکھتے ہوئے ووٹ ڈالے گی, پارٹی لائلٹی کی بیسس پہ نہیں, اور یہ میچورٹی کی ہماری علامت ہے.
اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ پاکستانی امریکی اور مسلم نوجوانوں کی بھی ایک بڑی تعداد نے اس انتخابات میں حصہ لیا, تو آپ نے کیا دیکھا, ان کا جھکاؤ کس طرف زیادہ دکھائی دیا آپ کو؟
دیکھیں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اب ہماری کمیونٹی, مسلمان ہو, پاکستانی کمیونٹی, ساؤتھ ایشین کمیونٹی, اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ان میں پبلک انوالومنٹ کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے, ووٹنگ ووٹ ڈالنے کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے. چند سال پہلے جب اسپیشلی جب 2003 میں میں الیکشن میں آیا تھا تو اس وقت بہت کم لوگ مسلمان پاکستانی ووٹ ڈالتے تھے, مگر اب آہستہ آہستہ یہ رجحان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور کافی بڑی تعداد میں ہمارے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے, جو کہ بہت ایک خوشائن بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز اور کینڈیڈیٹس کو مسلمانوں کے ووٹ کی ضرورت ہے اور ان کو اہمیت دینی پڑے گی مسلمانوں کے ووٹ کی, کیونکہ مسلمان اب بہت زیادہ تعداد میں ووٹ ڈال رہے ہیں. یہ اور یہ ینگ لوگ جو ہے وہ کافی ایکسائٹیڈ نظر آتے ہیں. اس دفعہ وہ ٹرینڈ یہ دیکھا ہے ہم نے پریزیڈنشل الیکشن میں بائیڈن صاحب کی طرف جھکاؤ زیادہ تھا, مگر انوالومنٹ اور ایکسائٹمنٹ اور انتھوزیازم جو ہے ینگ لوگوں میں وہ اس بات کی بڑی اچھی علامت ہے کہ آئندہ بھی ہمارے لوگ زیادہ ووٹ ڈالیں گے اور کینڈیڈیٹس کو اور پارٹیز کو ہمارے ایشوز کے اوپر اہمیت دینے کی ضرورت پڑے گی.
تو ایم جے خان صاحب یہ بتائیے کہ امریکہ میں تو دنیا بھر کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن بستے ہیں, تو امریکہ میں ہر مذہب کے تارکین وطن کس طرح مذہبی آزادی کو اویل کر رہے ہیں یا کرتے ہیں؟
دیکھیں جنرلی سپیکنگ تو اگر دیکھا جائے تو امریکہ میں پولیٹکس میں خاص طور کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل مذہب کو دور رکھنا چاہتے ہیں, جبکہ مسلمان ووٹر جو ہے وہ مذہب کو بہت اہمیت دیتا ہے, اور کوئی ایسا ایشو جو مذہب کے خلاف ہو, مثلا ابارشن کا ایشو ہو گیا ہے یا گے لیزبین کا ایشو ہو گیا, اس کی ان کے لیے اہمیت ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ پولیٹیکل پارٹیز یا کینڈیڈیٹ صرف مسلمانوں کو اس بیسس پہ اٹریکٹ کر لیں گے کہ وہ پارٹی ایفیلیشن ان کے ساتھ ہے, یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ مسلمان ووٹ میچور ووٹ ہے اور وہ مذہب کو اہمیت دیتے ہیں, اور بہت سے دوسرے لوگ بھی ہیں جو مذہب کو اہمیت دیتے ہیں. تو اس میں یہ جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹیز کی اور کینڈیڈیٹس کی غلطی ہوگی اگر وہ مذہب کو بالکل دور رکھ کے اور پولیٹکس میں امید کریں کہ مسلمان ووٹ یا مذہبی ووٹ ان کو مل جائے گا.
بے حد شکریہ ایم جے خان صاحب, ہماری گفتگو بھی جاری ہے لیکن ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.
کیا آپ جانتے ہیں کہ وی او اے اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے؟ جی ہاں, ویو 360 دیکھیے آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کی راؤنڈ ٹیبل, میں ہوں یاسمین جمیل. آج ہم بات کر رہے ہیں امریکی انتخابات اور تارکین وطن, اور تارکین وطن کے اس رول پر جو انہوں نے ادا کیا امریکی انتخابی تاریخ میں کسی بھی حوالے سے, یا امریکہ کی معیشت میں, معاشرت میں ان کا کیا رول رہا ہے اور کیا رول ہے اس وقت. گفتگو میں ہم شامل کرتے ہیں اب سیاٹل یونیورسٹی اسکول آف لا کے پروفیسر آف لا اور ڈائریکٹر سینٹر فار گلوبل جسٹس پروفیسر طیب محمود کو. پروفیسر طیب محمود صاحب, آپ کے نزدیک تاریخی اعتبار سے جو تارکین وطن ہیں یہاں امریکہ میں, ان کا انتخابات میں کیا رول رہا ہے, اور اس بار ان کا رول ماضی سے کس طرح مختلف یا ملتا جلتا رہا؟
سو پہلی بات تو یہ جی کہ جو ابھی حالیہ انتخاب ہے اس کے تو ابھی سٹیٹسٹک سامنے نہیں آئے, سوائے اس جنرل بات کے کہ بہت زیادہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی جو سٹیٹمنٹ دینا کہ اس دفعہ کیا ہوا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خیالی بات ہوگی, اس کا زمینی حقائق سے شاید کوئی تعلق نہ ہو. دوسری بات یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تارکین وطن نے کیا رول ادا کیا, تو یہ تو بہت وسیع سوال ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک طرح کا تارکین وطن تو یہاں نہیں ہے. یہاں تو 200 سال سے مختلف الاقسام لوگ آتے رہے ہیں, اور کئی جہاں پہ جو ووٹنگ کا پیٹرن ہے وہ کئی اس میں محرکات شامل ہو جاتے ہیں. اس میں نسلی آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے, اس میں آپ کی طبقاتی آئیڈینٹی کیا ہے, کچھ کچھ یہاں علاقائی تفریقات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ کوئی تارکین وطن کا کوئی خاص رول امریکہ کی سیاست میں ہو دوسرے لوگوں سے علاوہ, تو میرے خیال میں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں البتہ پھر ہم اگر کوئی اسپیسیفک بات کریں, مثال کے طور پہ کہ جو پاکستانی یہاں ہیں ان کا کیا رول رہا ہے, اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. لیکن وہ بات کرتے ہوئے بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایک پیکیج یا کوئی یونیفارمٹی نہیں ہے. جیسے ابھی کہا ہمارے دوست نے, تقریباً 1 ملین پاکستانی یہاں ہونے کو آئے ہیں, لیکن وہ سب کوئی ایک ہی خیال یا ایک ہی مزاج یا ایک ہی سیاسی نظریہ تو نہیں رکھتے. اس کے اندر بہت تفریقیں ہیں, اس میں خاص طور پر تفریقیں جو ہیں وہ ایک تو جسے کہا جاتا ہے 65 جنریشن, یعنی پہلے جو زیادہ تعلیم یافتہ اور ذرا ہائی انکم لوگ آئے, اور بعد کے امیگرینٹس جس میں بہت ورکنگ کلاس آئی, تو اس میں بہت تفریق ہے. جو عمر کی بڑی تفریق ہے, جو لوگ پہلی جنریشن کے امریکی ہوئے یا پھر ان کے بچے اور ان کی اولادیں جو یہاں پہ پیدا ہوئیں, ان کے اندر خیالات کی تفریق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بڑی غلطی ہوتی ہے کئی دفعہ یہ سمجھ اخذ کرنا کہ کوئی چیز ہے جس کو مثال کے طور پہ امریکہ میں پاکستانی ووٹنگ بلاک کہا جا سکے, یا امریکہ میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو مسلم ووٹنگ بلاک کہا جا سکے. ایسی کوئی چیز یہاں ایگزسٹ نہیں کرتی. ہاں مختلف پاکٹس میں مختلف تنظیمیں اور مختلف افراد مختلف جماعتوں کی طرف سے کام کرتے ہیں. کچھ کچھ تاریخی طور پہ یہ رہا کہ پہلے 65 کی جنریشن پہلے زیادہ نسبتاً زیادہ ریپبلکن ووٹ دیا کرتی تھی, کیونکہ کہیں یہ خیال تھا کہ تاریخی طور پہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے مسائل میں زیادہ حامی ہوتی ہے پاکستان کی. لیکن وہ بات بہت پرانی ہو گئی, اور اب ہمارے پاس کوئی پچھلے بھی چند الیکشنز کی طرف سے ایسا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے جس سے ہم وسوخ سے کہہ سکیں کہ یہاں پہ جو پاکستانی آباد ہیں ان کی میجورٹی نے کس طرح ووٹ ڈالا یا نہیں ڈالا.
ٹھیک, اور آپ یہ بھی نہیں کہہ پائیں گے کہ اس بار تارکین وطن نے کوئی رول پلے کیا انتخابات میں.
یہی ہم کہہ سکتے ہیں نا جی, یہ تو ہمیں پتا ہے اس وقت کہ جو ووٹر پارٹیسپیشن ہے وہ زیادہ نسبتاً زیادہ ہوئی ہے پچھلے الیکشنز کے معاملے میں. اس سے زیادہ ابھی ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. اور تارکین میں وطن سے آپ کا کیا مطلب, مطلب ہے جو یہاں فرانس سے آ کے بیٹھا ہوا ہے, یا وہ افریقہ سے آیا ہے, یا وہ بنگلہ دیش سے آیا ہے, یہ تین مختلف قسم کے تارکین
وطن جہاں جہاں سے بھی آیا ہے. ہماری مراد تارکین وطن میں تو یہ امریکہ کو تو اسی لیے لینڈ آف امیگرینٹس کہا جاتا ہے نا, تو جو بھی یہاں پر آ کر دنیا بھر سے آباد ہوا, ہمارا حوالہ اسی کی طرف ہمارا اشارہ ہے کہ جو
اس لحاظ سے تو یہ کہا جا سکتا ہے جو پچھلے کئی الیکشنز کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے کہ جو نئے شہری ہوتے ہیں وہ عموماً زیادہ ایکٹیولی شمولیت اختیار کرتے ہیں پولیٹیکل پروسیس میں. یعنی جنرلی جو نئے شہری بنتے ہیں ان کی ووٹنگ کا تناسب زیادہ ہوتا ہے جو یہاں پہلے سے رہنے والوں کے. لیکن آیا کہ وہ کسی ایک خاص پارٹی یا کسی خاص پولیٹیکل زاویے سے ان کا جو ہے الائنمنٹ ہے, اس ڈیٹا ہر بہت بکھرا ہوا ہے, اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوسرے محرکات پہ, جیسے میں نے پہلے کہا آمدن پہ, مذہب پہ, کس علاقے میں رہتے ہیں اس سے وغیرہ وغیرہ.
تو امیگرینٹس کے لیے کیا قوانین یہاں موجود ہیں امریکہ میں, اور گزشتہ 4 سال کے دوران آپ سمجھتے ہیں کہ ان قوانین میں جو تبدیلیاں آئیں ان کا جو یہاں موجود تارکین وطن ہے ان پر کوئی اثر پڑا؟ اور پھر میں آپ سے وہی سوال دوبارہ کروں گی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ اثر پڑا تو کیا ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر آئی یا محسوس کی جو ووٹ ڈالتے وقت؟
جی ہاں, پڑا. پچھلے 4 سال میں کچھ ایسے اقدام اٹھائے گئے ہیں جو کانگریس سے تو قوانین اتنے نہیں پاس ہوئے لیکن ایگزیکٹو برانچ نے ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے کئی معاملات میں ذرا جیسے کہتے ہیں امریکی زبان میں سکروز ٹائٹ کیے ہیں. ایک تو جو کام کرنے کے لیے یہاں لوگ آتے تھے ایچ ویزا کی جو کیٹیگری ہے اس کو ذرا ٹائٹن کر دیا گیا. کئی ممالک سے آنے پہ پابندی لگا دی گئی جیسے پہلے مسلم میں بین بھی کہا گیا. اسی طرح جو ڈاکہ کا قانون تھا کہ جو جہاں بچوں کے بچے تھے جب وہ آئے ہیں ان کو رہنے کی ذرا اجازت دے دی جائے ان پہ ذرا سختی کی گئی. تو کئی جو نئے ریگولیشنز پچھلے چار سال میں لیے گئے ان سے جنرلی جو امیگرینٹس ہیں خاص طور پہ نئے امیگرینٹس ان کے لیے تکلیفیں پیدا ہوئی ہیں. تو اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے اگرچہ جب ڈیٹا آئے گا تو اس کو پتا چلے گا لیکن اخذ کیا جا سکتا ہے کہ امکان ہے اس بات کا کہ زیادہ تارکین وطن نے خاص طور پہ وہ جن پہ یہ جو پچھلے چار سال کے قوانین کا برا اثر پڑا ہے جنرلی جو سینٹرل اور لیٹن امریکہ سے آنے والے جو انڈیا سے آنے والے خاص طور پہ ایچ ون کی ایچ کی کیٹیگری میں تو اس وجہ سے کافی امکان ہے کہ انہوں نے زیادہ ووٹ ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف دیا ہو لیکن یہ حتمی طور پہ تب بھی کہا جا سکے گا جب اس کے زیادہ ڈیٹا سامنے آئے.
بالکل. تو شکریہ طیب محمود صاحب آپ سے ہماری گفتگو جاری ہے. اب ہم پروگرام میں شامل کریں گے زلقی خان صاحب کو. زلقی خان صاحب آپ ایک ماڈل ہیں ایک روایتی تارک وطن کا جو چند سو ڈالرز یا خالی ہاتھ یہاں امریکہ آتا ہے اور پھر وہ یہاں کے مواقعوں کو اویل کر کے اپنے تمام جو اس کے خواب ہیں پرانے ہیں نئے ہیں انہیں پورا کرتا ہے اور پھر وہ اس ملک کی معیشت اور معاشرت کو بہتر بنانے میں ایک رول ادا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے آبائی ملک کے لیے بھی وہ بہت کچھ کرتا ہے. تو کچھ سنائیے بلکہ اپنی کہانی بلکہ یوں کہیے کہ امریکہ کے ایک روایتی تارک وطن کی کہانی سنائیے اس وقت.
آئی ڈونٹ نو اف آئی وڈ کال مائی سیلف اے ماڈل لیکن اپنی طرف سے جب آدمی آتا ہے اپنی ملک چھوڑ کے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنی بھی بہتری ہو خاندان کی اور لوگوں کی. کہانی کا جو شروع ہے وہ یہ کہ میری آبائی جو تعلیم تھی وہ حیدرآباد سندھ میں ہوئی پھر میں کراچی میں آ گیا. کراچی میں این ای ڈی میں ایڈمیشن ہوا وہاں سے میں نے انجینئرنگ فنش کی اپنی. پھر میں امریکہ آئے 1988 میں جب میں نے ایم بی اے میں ایڈمیشن لیا یونیورسٹی آف آئیوا سے ایڈمیشن ختم کیا اور اس کے بعد میں نے شکاگو میں کام کیا تھوڑا عرصہ جس سے مجھے گرین کارڈ ملا. جب وہ ہو گیا گرین کارڈ آ گیا تو آپ کے پاس تھوڑا سا تحفظ کا احساس ہو جاتا ہے آپ چانسز لے سکتے ہیں. تو اس وقت میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چاہے تو میں واپس کارپوریٹ ورلڈ میں چلا جاؤں اور کسی کے لیے کام کروں یا پھر دوسرا اور بہت جو آپ کہہ رہے ہیں اپنے خواب بننے کی وہ بات ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس موقع پہ اپنا کام کو شروع کیا جائے. تو میں نے بہت ہی قلیل رقم سے تقریباً $30,000 سے اپنا کام شروع کیا اور یہ کام جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم ہارڈ ویئر ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. سلیکن ویلی میں ہمارا دفتر ہے, ایک ہمارا ڈیزائن سینٹر کراچی میں بھی ہے اور ایک ہمارا چنائی انڈیا میں بھی ہے. تو ہم لوگ جو کمپنیز ہیں ٹیکنالوجی میں جو سب سلیکن ویلی, سب تو نہیں کہوں گا میں لیکن موسٹلی دے آر آؤٹ آف سلیکن ویلی, جیسے ایپل ہے, انٹیل ہے, گوگل ہے, فیس بک ہے, اور بہت سی کمپنیز ہیں, ای بے ہے. تو یہ ساری کمپنیز جو ہے ان کی پروڈکٹس ہوتی ہیں ہارڈ ویئر پروڈکٹس, تو ہم ان کو ڈیزائن کرتے ہیں اور پھر ان کو کچھ پروٹوٹائپس بنا کے دیتے ہیں. اور یہ جو کام ہے ہم اپنے ملک میں جو کراچی میں ہمارا دفتر ہے اس کی مدد سے کرتے ہیں. وہاں بھی ہمارے پاس انجینئر ہیں, یہاں پہ ہمارے پاس انجینئرنگ ہے, مینوفیکچرنگ ہے. تو جب کام کچھ سمجھا کچھ سدھرا تو میں نے یہ سوچا کہ اب تھوڑا سا ڈائیورسیفائی بھی کرنا چاہیے. تو پھر میں نے کچھ ریئل اسٹیٹ میں کمپنیز بنائی, اس میں کام کیا, اس میں ریہیبلیٹیشن کا بھی ہے, کنسٹرکشن کا بھی کام ہے. پھر اور اللہ نے بڑا احسان کیا تو اس کے بعد پھر میں نے اور مختلف جگہوں پہ کام شروع کیا, ساؤتھ امریکہ میں گولڈ اینڈ ڈائمنڈ مائننگ کا, پالشنگ کا, فنیشنگ کا, اور پھر اور کمپنیز بنائی جس میں میڈیکل ڈیزائن کی الگ سے ایک کمپنی ہے جس میں ہم ایک ڈینٹل پروڈکٹ بنا رہے ہیں. جب اللہ دیتا ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو پھر میں نے 2012 میں एक पाकिस्तान में ट्रस्ट शुरू किया जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसमें हम आपने बताया था शुरू में कि उसका नाम है ह्यूट ह्यूमन एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर ट्रस्ट उसका नाम है, और वो गरीब लोगों को, मुस्तहकीन जो होते हैं, गरीब तरीन, बिल्कुल गरीब तरीन, जिनके पास दो रोटी खाने की नहीं होती, उन लोगों को हम बिला सूद के कर्जे देते हैं। पाकिस्तान में हमारे पास 13 और 14 जगहों पे, फ्रॉम कराची ऑल द वे टू गिलगित एंड चित्राल, पिशावर, कोयटा, लाहौर, गुजरांवाला, जहलम, सिंध में डीपलो, उमरकोट, मातली, कोयटा, पिशावर में और दूसरी जगहों पे हमारे पास सेंटर्स हैं, जहाँ पे हमारे पास एंकर लोग होते हैं जो हमारे बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कर्जे हंसना, और फिर उनसे मंथली एक साथ वापस लेते हैं। और इस प्रोसेस में जो वो बिजनेस छोटे मोटे अपने घरेलू बेस बिजनेस शुरू करते हैं, तो होपफुली उनका जो है न सिर्फ मुआशी बेहतरी उनमें आती है, बल्कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर कर लेते हैं। बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चे बच्चों को काम पे लगाया हुआ था, जब उन्होंने लोन लिया और कोई काम शुरू किया तो बच्चे बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे और जाने लगे, और उनका ओवरऑल एक जो है न सिर्फ अपने छोटे से माशरे में, गाँव में उनका जो वो उनका एक स्टेटस था वो बेहतर हुआ, बल्कि एक मौसी जरिया उनका बन गया। तो ये हमारा एक बेसिक टेनेंट था जो हमने शुरू किया इस तरह से। और फिर हमने अब एक्सपेंड किया है, हम युगांडा में, अफ्रीका में और रवांडा में भी ये काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मुख्तसरतन
कहानी है, और ऐसी कहानी है जो कि बहुत से जो तारकीन वतन है उनकी यही कहानी है कि जब वो आते हैं तो क्या सूरत होती है, और जब वो यहाँ पर सेटल हो जाते हैं तो क्या क्या कुछ वो करते हैं अपने लिए भी, और अब आप तो पूरी दुनिया के लिए, लोगों के लिए, जो भी मुस्तहिक है उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये है अमेरिका में आबाद मौकों से फायदा उठाने वाले तारकीन वतन, जिसकी आप एक मिसाल हैं। और गुफ्तगू में हम हारिस अहमद साहब को एक बार फिर शामिल करते हैं। जुल्की खान साहब ने अपनी कहानी सुनाई, आप किस तरह रिलेट करेंगे अपने आप को एक मॉडल तारक वतन के तौर पर, और बल्कि आप गुफ्तगू यहां से शुरू कीजिए कि इस वक्त अमेरिका में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें तारकीन वतन की क्या सूरत है, और वो कैसे यहाँ पर आए थे और कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन गए।
जिस तरह आपने कहा, कितनी बड़ी कंपनीज के जो सीईओज हैं वो इमिग्रेंट्स रहे हैं और अभी भी उन पोजीशंस पे हैं। तो जो लोगों का ख्याल है कि जो अपॉर्चुनिटीज अमेरिका में थी पहले वो शायद अब नहीं है, वो बात मैं उससे अग्री नहीं करता हूँ। हमने ये देखा है ओपन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए, ये तकरीबन 20-30 साल से हम एक ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे हैं, इंडिविजुअल से कलेक्टिव लेवल पे आए हुए हैं, और अब हम ये देख रहे हैं कि माशाल्लाह हमारे जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं जिन्होंने एक सक्सेस अचीव कर ली है, जिस तरह सुची साहब ने कहा, अब उसको हम किस तरह कलेक्टिवली ट्रांसफॉर्म करें ताकि हम अब दूसरे लोगों के लिए रास्ते खुलें। तो इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करना जिन लोगों ने एक लेवल पे जा चुके हैं, किस तरह सरमाया दें जिन लोगों के पास आइडियाज हैं, या वो लोग पाकिस्तान में हो या वो यूएस में हो। तो अब ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट शुरू हो गई है पिछले 5-10 साल में, कि जिस तरह इंडिविजुअल सक्सेस को हम जिस तरह उभार सकें। और बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो लोगों ने कुछ लेके नहीं आए और क्या क्रिएट किया, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ पैसे बनाए, उसके साथ उन्होंने और किस तरह यहाँ की कम्युनिटी को इम्पैक्ट किया, जॉब क्रिएशन, और अब अपने असर और रसूख की वजह से जो इंटरेस्ट चीजें हैं उनके लिए अपने वैल्यू सिस्टम उसको किस तरह पुश करें। जिस तरह हमने शुरू में बात की थी, ये इस इलेक्शन साइकिल में हमने देखा कि बहुत से लोगों ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने अपने कारोबार तकरीबन बंद कर दिए 3 महीने के लिए वॉलंटियर एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि उनका ख्याल था कि अगर हम इस इलेक्शन में अपना एक रोल अदा ना करें और अगर हम एक कंट्रीब्यूशन ना करें तो वो पैसे बनाने का क्या फायदा हुआ। तो ये सब चीजें अब हमारी कम्युनिटी में अब आनी शुरू हो गई हैं। इस दफा हमने देखा है कि हमारी कम्युनिटी के जो यंग लोग हैं वो अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जैसे आपके सामईन को पता होगा, इस दफा कांग्रेस के लिए, यूएस कांग्रेस के लिए सीट के लिए एक साहिब है वर्जीनिया से, कासिम रशीद, लॉयर हैं, वो उन्होंने लड़ाया, वो जीते नहीं है, तो जीतना तो हारना एक डिफरेंट बात होती है, लेकिन he came within a few thousand votes of becoming a first Pakistani American congressman. So ye sari cheeze development hui hai hamari community ki aur ab hum representation cha rahe hain. Hum ye nahi cha rahe hain ki hum apni 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 fields mein ek level pe pahunche jo ki hum bahut se mashallah log pahunch chuke hue hain, lekin society level pe hum kis tarah nazar aaye ki hum ek impact kar rahe hain.
To bahut shukriya Haris Ahmed sahab. और अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं गजाला सादिक साहिबा को, नॉर्थ कैरोलिना से हमारे साथ टेलीफोन पर हैं। गजाला सादिक साहिबा, आप क्या समझती हैं और क्या देखती हैं कि जो पाकिस्तानी अमरीकी खवातीन हैं यहाँ पर या जो जनूबी एशियाई खवातीन हैं, वो किस हद तक सियासी धारे में सामने आ रही हैं और किन किन शोबों में वो ज्यादा नजर आती हैं?
काफी मतलब इन्वॉल्व हैं, बातें करते हैं आपस में, डिस्कशंस होती हैं हीटेड और वोट डाल दी है. बल्कि मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत खुशी और हैर बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि हमारी जो बेटियां हैं, मेरी अपनी तो कोई बेटी नहीं, मेरे दो बेटे हैं, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं उनमें से कुछ पॉलिटिक्स में आ रही हैं. हमारी एक जैनब बलोच है जो कि मेयर की उससे बनी, वो जीती तो नहीं लेकिन ये कि वो खड़ी हुई, और एक हमारी अभी बोर्ड ऑफ कमिश्नर में, तो लड़कियां भी पॉलिटिक्स में आ रही हैं जो कि बड़ा अच्छा एनकरेजिंग साइन लग रहा है.
और लेकिन ये कि जनरली आप क्या देख रहे हैं कि जो खवातीन हैं वो जो मेन स्ट्रीम है अमेरिका की, उसमें जो तारकिन वतन खवातीन की मैं बात कर रही हूँ, वो किस तरह से शामिल हो रही हैं और किन किन शोबों में ज्यादातर, जो अगर हम जनूबी एशियाई खवातीन की बात करें तो वो मौजूद हैं?
मेरा जो मैंने जो देखा, मैं खुद जो हूँ इंजीनियरिंग से, उसमें डेटा साइंटिस्ट मेरा प्रोफेशन है, यहाँ मैंने आकर पीएचडी की इंजीनियरिंग में, और उसके बाद फिर 25-30 साल बाद दोबारा वापस गई, और क्योंकि कंप्यूटर्स और इंटरनेट की वजह से चीजें बहुत बदल चुकी थी तो अपग्रेड की अपने स्किल्स, तो मैं तो इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ. लेकिन मैंने जो देखा है अपनी ख्वातीन हैं, कुछ उनमें से डॉक्टर हैं और उसके अलावा हाउसवाइफ्स हैं, तो हम या तो डॉक्टरी पे जाते हैं और या फिर इंजीनियरिंग की तरफ हमारा रुझान नहीं, या आईटी की तरफ. और मैंने ये देखा है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो सब घर पे हाउसवाइव्स, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर उनमें से कुछ ख्वातीन निकलती हैं और काम ढूंढती हैं, लेकिन उस वक्त तक तो एजुकेशन और वो फिर मामूली जॉब्स होती हैं, इतनी प्रोफेशनल जॉब्स नहीं होती.
तो शुक्रिया गजाला सादिक साहिबा, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है. आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu.
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के रेडियो शोज आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर.
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील. आज की राउंड टेबल के साथ हम बात कर रहे हैं अमरीकी इंतखाबात 2020 और तारकीन वतन के उस रोल के बारे में जो उन्होंने इन इंतखाबात में अदा किया और जो अमरीका की मईशत माशरत को बेहतर बनाने में वो एक रोल प्ले कर रहे हैं और जो रोल वो प्ले कर रहे हैं अपने नेटिव कंट्रीज के लिए. तो गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं. प्रोग्राम में शामिल करते हैं हारिस अहमद साहब. आपको कुछ ये भी बताइए कि यहाँ जो तारकीन वतन हैं उन्होंने अपने ड्रीम्स पूरे किए, यहाँ के अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया, लेकिन उसके लिए उनको क्या स्ट्रगल करनी पड़ी, किन मसाइल से गुजरना पड़ा और उनका ये सफर कैसे गुजरा, और इसमें आपकी अपनी कहानी भी जरूर शामिल होगी.
बिल्कुल आपने सही कहा, स्ट्रगल तो करना पड़ता है और ये स्टडीज हुई है कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनको 2-3 टाइम्स ज्यादा काम करना पड़ता है टू बी रिकॉग्नाइज. तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद बड़ी कंपनीज के साथ मैंने तकरीबन 15 साल काम किया और उसमें इंसान स्किल्स सीखता है. मैंने कंसल्टिंग की फील्ड में शुरू किया था और फिर तकरीबन 15 साल कबल मैंने फिर अपनी एक ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म शिकागो में फॉर्म की है जो कि ज्यादातर लार्ज कंपनीज के साथ काम करती है. तो उसके भी एक इश्यूज होते हैं, आप अपना जब आप एक काम शुरू करते हैं उसमें रिसेशन में इम्पैक्ट होते हैं, ग्रोथ के पीरियड्स आते हैं और फिर ढलान भी आती है, लेकिन उन सब के थ्रू इंसान के एक वो फोकस होता है कि आपने अगर जैसे जुल्फी साहब ने कहा आप यहाँ आए हैं तो अब आपने कुछ अचीव करना है अपनी फील्ड में. तो मैं तो कहता हूँ कि इंसान की एफर्ट एक जगह होती है लेकिन अल्लाह ताला का फजल होना चाहिए. और इस कंट्री को जितना भी मैं सलाम कहूँ वो कम है कि अगर आप अपने एफर्ट्स डालें और अपनी फील्ड में अपनी एक नाम पैदा करना की कोशिश करें तो वो ये सोसाइटी आपको रिसीव करती है. मैं उसका बेनिफिशरी बहुत रहा हूँ और ये चीज़ जो है हम लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये मेरिटोक्रेसी का जो प्रोसेस यूएस में है जिसकी वजह से लोग आते हैं और आएंगे और हमेशा आएंगे कि ये अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो सबके लिए मुयसर होती हैं एज लॉन्ग एज आप अपना हार्ड वर्क उसमें रखें.
ठीक, तो शुक्रिया हारिस साहब, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं. एक बार फिर प्रोफेसर तैयब महमूद साहब को प्रोग्राम में शामिल करते हैं. प्रोफेसर तैयब महमूद साहब, ये बताइए कि ये सारे तरक्कीन वतन की बात हमने की जो कि कानूनी तौर पर यहाँ पर आए, जो गैर कानूनी तौर पर तरक्कीन वतन यहाँ पर आते हैं उनको अमरीका किस तरह संभालता है?
लाकानूनी की भी बात करते हैं लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा उस तनाजर में जो पहले हमारे दोनों मेहमानों ने बात की और जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल बजा है. लेकिन ये भी याद रखिए कि हमारे मेहमानों की तरह और मैं भी उसमें शामिल हूं और बहुत हैं जो यहाँ पहले ही आला तालीम याफ्ता लोग आते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों की सोशलाइज्ड तालीम से मुस्तफीद हो चुके होते हैं और यहाँ पे फिर निस्बतन आसानी से एक अच्छी डगर पे चल निकलते हैं और वो बहुत अच्छी बात. टैक्सी ड्राइवर और होटलों में प्लेटें धोने से लेके और काम भी करने वाले आते हैं और वो बेशुमार हैं उनके नंबर वो, और वो जरूरी नहीं कि वो गैर कानूनी हो. तो ये याद रखना चाहिए और उनकी राह में जिस किस्म की रुकावटें आती हैं मुआशी समाजी नस्ली वगैरह वगैरह वो हम जैसों को कभी देखनी नहीं पड़ती. तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज की निशानदेही करें ताकि हमारी अपनी जो समझ है इस मसले के बारे में और हमारे जो सुनने वाले हैं उनकी समझ इस बारे में वो क्लियर हो कि ये नहीं है कि बस आप यहाँ पे लैंड करें और उसके बाद जो है बाकी सब अच्छे की आवाज आ जाएगी. जी हाँ, मेहनत तो है ही है लेकिन मेहनत के सिर्फ खैर बात हो गई. कहने का मतलब ये है कि आप जो क्या अपने साथ लेके आते हैं ये जो है अपनी जो मेंटल इक्विपमेंट होता है जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होती है उसकी एक वैल्यू होती है जिस जो मोनेटाइज करना मुश्किल है लेकिन वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है. तो ये याद रखना चाहिए और खासतौर पे 40 साल पहले के मुकाबले में आज पाकिस्तानी जो यहाँ तकरीबन तकरीबन 1 मिलियन के करीब हो गए हैं उसमें बहुत मिकदार उनकी है जिनके पास उस किस्म की तालीमी महारत नहीं है. तो अब बात करते हैं जो आपने कही जो गैर कानूनी तौर पे पहुंचते हैं तो वो मतलब वो भी एक देखिए ये सदा से जो है माइग्रेशन का चीज तारीख में हमेशा रही है. जहां भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कम होती है वहां से लोग मूव करते हैं और जहां इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है वहां जाते हैं. ये पूरी तारीख में इस चीज की शाहिद. तो उसके अंदर जो कानून माने आते हैं लेकिन कभी भी वो उस फ्लो को पूरी तरह रोक नहीं सकते चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो कोई और जगह हो कल रही हो. तो वो एक सिलसिला रहता है और अभी भी जारी है. तो उसके लिए साफ जाहिर है फिर कि उनके लिए जरा मुश्किलात अपने कदम जमाने के लिए निस्बतन मुश्किल होती हैं और खास तौर पे पिछले 12-15 साल से जो कवानीन तवातल से आ रहे हैं उनसे उनके लिए अपने कदम जमाना और मुश्किल हो जाता है. बल्कि अब तो ज्यादा डिपोर्टेशन वगैरह भी शुरू हो गई हैं. लेकिन ये है कि वो एक उसको वो जैसे कहते हैं ना कि गैर कानूनी कोई इंसान नहीं होता बस वो अनडॉक्यूमेंटेड का मैं समझता हूँ टर्म ज्यादा मुनासिब होगी. वो भी इंसान है उनके भी एक हकूक है उनकी भी एक जरूरियात है उनकी भी उमंगे हैं उनकी भी के भी ख्वाब हैं. तो ये सिर्फ ख्वाब और उमंगे जो हैं वो डॉक्टरों इंजीनियरों और PhDs के नहीं होते आम इंसानों के भी होते हैं और उनके भी वही हकूक होते हैं. तो ठीक है हर मुल्क के अपने इमिग्रेशन के कवानीन होते हैं और वो उनका हक है वो कवानीन बनाने का. लेकिन जो माइग्रेशन है लो अपॉर्चुनिटी से हाई अपॉर्चुनिटी इलाकों में वो भी इंसान की एक खसलत है और वो रहेगी. और तो देखिए ये मसला तो हमारे साथ रहेगा, वो अब अगली क्या करवट लेता है ये वक्त बताएगा।
प्रोफेसर तैयब महमूद साहब, ये बताइए कि जो कोरोना की वजह से जो सभी काम रुक गए, तो तारकीन वतन को किस किस्म के कानूनी मसाइल इस वक्त पेश आ रहे हैं?
वो तो जी बहुत आ रहे हैं, एक तो सफर ही करना मुश्किल हुआ है, कई किस्म की उस पर पाबंदियां हैं, उसके बाद जो है प्रोसेसिंग, कई किस्म के लोग जो पाइपलाइन में थे मुख्तलिफ किस्म के वीजाज लगने के लिए, चाहे वो फैमिली रीयूनिफिकेशन के हवाले से हों, चाहे वो लेबर सर्टिफिकेशन के हवाले से हों, तो उसमें डिले रखना, देर हो जाती है। तालिब इल्म जो पहले ही यहाँ यूनिवर्सिटियों में थे या जिन्होंने आना था, उनके लिए दुश्वारियां पेश हुई हैं। तो अब उसमें होता यह है कि अगर आप पाइपलाइन में भी हों और उसमें महीनों का या पता नहीं है शायद सालों पे चली जाए बात, रखना पड़ जाए, तो आप भी तो एक जगह पे नहीं ना खड़े रहते, जिंदगी के हालात बदलते हैं, जिंदगी की जरूरियात बदलती हैं। तो इसमें तो कोई शुबा नहीं कि जो कोरोना वायरस का और कोई इम्पैक्ट हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उसका इमिग्रेशन के फ्लो पे, इमिग्रेशन की तादाद पे, इमिग्रेशन की सहूलत पे बहुत फर्क पड़ गया है और शायद और पड़ेगा।
तो गजाला सादिक साहिबा, आपसे हम पूछेंगे कि ये बताइए कि कल्चरल जो मसाइल हैं जो तारकीन वतन को, वो क्या क्या पेश आते हैं, किस किस्म के सामाजिक मसाइल जन्म लेते हैं जो तारकीन वतन यहाँ आकर आबाद होते हैं, अपने कल्चर से दूरी का, उनके नौजवानों के शादी ब्याह के मसाइल भी यहाँ बहुत ज्यादा पेश आते हैं, तो उस मसले को जरा हाईलाइट कीजिए कि और क्या मसाइल उनको पेश आते हैं और वो उनसे किस तरह निमटते हैं फिर। जी गजारा सादिक साहब,
तो आपने मुझसे ऐसा सवाल किया जिसमें मैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जवाब दूं। मैं आपको अपनी कहानी बता सकती हूँ कि जब मैं आई तो बहुत मैं सिर्फ 20 साल मेरी उम्र थी, कोई मेरी फैमिली नहीं थी, जो टिपिकल केस नहीं है जब औरतें यहाँ आती हैं तो शादीशुदा होती हैं, तो बहुत कल्चरल मुश्किलात पेश आई मुझे, क्योंकि तन्हाइयत, घर की याद, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से एकदम से इधर आ जाना, तो बहुत मुश्किलें हुई। लेकिन जब मैं आ रही थी तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक नसीहत की जिसकी वजह से मैं सरवाइव कर सकी, और उन्होंने ये कहा कि बेटा जिस कल्चर में भी जाओगे तुम्हें कुछ उधर की अच्छी चीजें नजर आएंगी, कुछ बुरी, और हमारी भी जो कल्चर है उसमें कुछ अच्छी कुछ बुरी, ये नहीं कि हमारा सब कुछ अच्छा है और उनका सब कुछ बुरा है, तो तुम्हारा काम ये है कि जो अपनी अच्छी चीजें हैं वो रखो और जो उनकी अच्छी चीजें हैं वो अपनाओ। तो उसकी वजह से मुझे बहुत, वो बात मेरे दिल को बहुत भाई और अभी तक मेरे दिल में है कि हर चीज जो है वो सेक्रेड नहीं होती अपनी, हमारी कल्चर में भी बुराइयां हैं जो इधर नहीं है, तो मैं उनको अपनाऊं और अपनी अच्छी रखूं, तो इस वजह से मेरा जो वो था बदल गया। लेकिन जो बाकी लोग हैं मैं उनका देखती हूँ कि अक्सर लोग जो है ना वो चाहते हैं कि अपनी हर वैल्यू पे हैंग उसके साथ रहें और अपने बच्चों में भी वही डालें, जो कि उनके बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, उनके बच्चे फिर आइसोलेट हो जाते हैं, उनको इजाजत नहीं होती कि अमेरिकन बच्चों के साथ उनकी दोस्तियां हों, उनके साथ बाहर आए जाए, तो थोड़ी सी आइसोलेशन हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल में कि ख्याल रखना चाहिए कि जरूरी नहीं कि अपनी हर चीज अच्छी हो, बल्कि यू नो वैल्यूज चूज करें और उस हिसाब से जाएं तो आई थिंक बेहतर रहेगा, और खासतौर पे बच्चे जो हैं फिर अगर उनको आप इतना आइसोलेट कर दें तो या तो वो उस सांचे में ढल जाएंगे और या फिर वो बिल्कुल बागी हो जाएंगे, जो कि मैं दोनों तरह की चीजें देख रही हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अच्छे उसी तरह यू नो हो गए और कुछ जो हैं वो बिल्कुल बागी हो गए।
तो शुक्रिया गजाला सादिक साहिबा, आपसे अभी कुछ और बातें भी होंगी, एक ब्रेक का वक्त फिर हो गया, तो पहले एक ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं।
क्या आप जानते हैं कि VOA उर्दू का एक टीवी शो भी है? जी हाँ, व्यू 360 देखिए आज न्यूज पर पीर से जुमा शाम 7:30 बजे।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज की राउंड टेबल, हम बात कर रहे हैं अमरीकी इंतखाबात 2020 और तारकीन वतन के बारे में। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सियाटल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के प्रोफेसर ऑफ लॉ और डायरेक्टर सेंटर फॉर ग्लोबल जस्टिस प्रोफेसर तैयब महमूद, और हमारे साथ हैं ह्यूस्टन टेक्सस के एक रिपब्लिकन और साबिक काउंसिल मेंबर और इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन के साबिक सदर मसरूर जावेद खान या एम जे खान, और हमारे साथ हैं कैलिफोर्निया से टेक्नोलॉजी की एक इंटरनेशनल कंपनी के फाउंडर और सीईओ जुल्की खान, और हमारे साथ हैं नॉर्थ अमेरिका में पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स की तंजीम ओपन के शिकागो चैप्टर के सदर हारिस अहमद, और हमारे साथ हैं नॉर्थ कैरोलिना से एक डेटा साइंटिस्ट गजाला सादिक। तो एक बार फिर गुफ्तगू में गजाला सादिक साहिबा, आप ही से सवाल कि ये बताइए कि यहां पर जो नई जनरेशन है उसके लिए जो मैच मेकिंग या शादी ब्याह के मसाइल हैं वो किस तरह मुश्किलात में डाल रहे हैं उन तारकीन वतन को जो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पर मौजूद हैं।
आपने मेरी बड़ी दुखी रग को छेड़ दिया है साहिबा। मेरे दो बेटे हैं, दोनों जवान हैं और दोनों शादी बगैर शादी के हैं, और मुझे इजाजत नहीं कि मैं उनके लिए कोई ढूंढूं। तो वो दोनों तो निकल इस उसमें नहीं है, वो खुद ही ढूंढेंगे और खुद ही करेंगे। लेकिन मुझे अगर मैंने उनको कुछ दिखाया तो वो बिल्कुल बिल्कुल मेरी बात नहीं मानेंगे। लेकिन आपकी बात सही है, क्योंकि मेरे भांजे भतीजे वगैरह भी हैं और कम्युनिटी में भी बहुत बच्चे हैं, तो शादियों की वाकई बहुत मुश्किल होती है। हम लोग समझते हैं लड़कियों की शादियां, लेकिन लड़कों की भी शादियां बहुत मुश्किल काम है इधर, क्योंकि जो पूल है वो जरा छोटा है तो इतनी आसानी से नहीं होती। लेकिन मैं देख रही हूँ कि काफी मुश्किल से होती हैं, लेकिन ये मैं देख रही हूँ कि जो होती हैं वो अक्सर कामयाब जा रही हैं, बड़ी अच्छी जा रही हैं। अब ज्यादा ट्रेंड जो हो गया वो ऑनलाइन का हो गया, जिसकी वजह से कुछ सहूलत हो गई है, क्योंकि आई थिंक उससे काफी आपको किसी और स्टेट में भी लोग नजर आ जाते हैं जिनके इंटरेस्ट वही हो, बैकग्राउंड वही हो, तो उसकी वजह से कुछ आसानी हो गई। लेकिन आमतौर पर ये मसला है, ये बहुत मुश्किल काम है बच्चों की शादियां।
तो ये यानी समाजी मसाइल से भी तारकीन वतन दो चार होते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान ही का मसला नहीं, दुनिया भर से जो भी तारकीन वतन यहाँ पर आते हैं उनके उनकी जो अगली नस्लें होती हैं उनको इस किस्म के मसाइल दरपेश होते हैं, जो जिनको हम कल्चरल मसाइल भी कह सकते हैं। और प्रोफेसर तैयब महमूद साहब तो नौजवानों से बहुत ज़्यादा इन टच रहते हैं, और हारिस साहब भी, आप दोनों बताइए कि जो तारकीन वतन नौजवान हैं उनको किस किस्म के समाजी मसाइल क्या इसी तरह के पेश आते हैं जिस तरह के गजाला सादिक साहबा ने जिक्र किया, कि आप कुछ और ऐड करेंगे इसमें हारिस साहब और प्रोफेसर तैयब महमूद साहब?
नहीं, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि यू नो ऑब्वियसली एक जनरेशनल डिफरेंस होता है और उनको उनको बहुत सी दूसरी चीजों में डील करना पड़ता है। हमने अभी एक रिसेंटली एक ये सर्वे किया था पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का, छोटा सा सैंपल सर्वे था, उसमें हमने ये देखा कि मैं एक पॉलिटिक्स के हिस्से से आपको एक रिस्पांस देता हूँ कि जो जो ओल्डर जनरेशन है जो यूएस पॉलिटिक्स को एक पाकिस्तान के नुक्ते निगाह से देखती है, ये यंगर जनरेशन जो है वो यहाँ के मसलों को देखती है, वो इकोनॉमी यू नो जो कोविड के मसले थे, जो रेशियल मसले हैं वो उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो हमें जैसे पहले कहा गया है कि जनरेशनल डिफरेंसेस को अपने मद्देनजर में रखना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे जो गाइडेंस हम दे सकते हैं यंग लोगों को, उनके मसले समझने के बाद ही दे सकते हैं, उनके मसले वो नहीं है जो हमारे होते हैं।
ठीक। और प्रोफेसर तैयब महमूद साहब?
और उसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला जो है वो है मर्द और औरत के इस तल्लुक का, क्योंकि हम अपने साथ लेके आते हैं एक खास सांचा मर्द और औरत के तल्लुक का, जिसमें बहुत अच्छी भी चीजें हैं और बहुत बुरी भी चीजें हैं, और लेकिन ये है कि उस सांचे का जूं का तू यहाँ पे फिट होना वो तकरीबन नामुमकिन है। तो इस वो भी एक वजह हो जाती है कि जो जनरेशनल एक गल्फ आ गया है कम्युनिटी में, वो साथ साथ एक तरह से जेंडर गल्फ भी है, क्योंकि कई जो फिर पुरानी जनरेशन है उनका ख्याल है कि वो वही जो पाकिस्तान में यू नो भाई फेरू में मर्द औरत के तल्लुकात होते थे या बाप बेटी के तल्लुकात होते थे, उसी को यहाँ भी डिट्रॉयट में भी वही चलेगा, तो वो तो नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चैलेंज भी बहुत हैं, और उसमें जो चैलेंजेस नई नस्ल के लिए हैं उनसे ओहदा बरा होने के लिए भार जो है पुरानी नस्ल को भी उठाना पड़ेगा कि हम भी जो है जो नई चीजें सीखें, नए तरीकों पे चलना सीखें, ताकि हमारी कम्युनिकेशन नई नस्ल के साथ बेहतर हो सके, मुस्बत हो सके और ऐसी हो सके जिसमें उनके भी यहाँ पे कदम जमाने के सामान जो है वो मुस्तहकम हो सके।
बहुत अच्छी बातें की आपने प्रोफेसर तैयब महमूद साहब। हारिस अहमद साहब, आप भी इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, जो आने वाले आइंदा आने वाले तारकीन वतन हैं जो इस वक्त दुनिया भर में हमें सुन रहे हैं, पाकिस्तान में, जनूबी एशिया में, उनको आप क्या तजावीज देंगे कि जब वो यहाँ आए अमरीका में तो क्या सोच लेकर आए, क्या जहन लेकर आए और क्या किन टूल्स से अपने आप को आरास्ता या इक्विप करके आए?
अच्छा सवाल किया आपने। तो ये तो एक एक लाइन लगी रहती है जो लोग आना चाहते हैं यूएस, खासकर सारी दुनिया से और पाकिस्तान से इन पर्टिकुलर। तो यू नो जो रेसिपीज हैं जो हमने इन सबने बात की है वो यही है कि अपनी हार्ड वर्क, फोकस रखना। लेकिन एक मैं और तजवीज उनको ये दूंगा कि अब उनके पास ये एडवांटेज है, जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा कि अब यहाँ बड़े एक 30-40 साल से जो लोग रहे हैं उनको एक एक्सपीरियंस का बेसिस हो गई है। तो ये जो स्टडीज होती हैं उसमें वही दिखाते हैं कि अगर आप किसी की एडवाइस ले सकें, आपको कोई मेंटर मिल सके जो आपको एक रास्ता बता सके, जिस तरह जुल्फी साहब ने पहले कहा कि अगर जब वो आए थे उन्होंने, जिस तरह मैंने भी काफी मिस्टेक्स की, तो अगर कोई आदमी उनको ये एक नौजवान को ये बता दे कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता 20 साल या 25 साल की उम्र में और ये मैं डिसीजंस ले रहा होता कि मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे अपने किस तरह अपने यहाँ पे कदम जमाने हैं, तो एडवाइस लें, जितने लोगों से एडवाइस ले सकते हैं उसका उसका बेसिस ये हो सकती है कि उसकी वजह से जो कुछ लोग ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, जो ठोकरे खाते हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं, वो बेनिफिट तो एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम एक तवील अरसे से इस मुल्क में हैं और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ओपन के इदारे में और अपनी एक पर्सनल बेसिस पे भी कि जितने भी लोगों से हम ये बातें कर सकें और उनको हम गाइड कर सकें। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि 5 या 10 मिनट की एक कॉन्वर्सेशन जो होती है वो एक इंसान को सही रास्ते की तरफ ले आती है और बहुत से लोग जो हैं वो उससे बेनिफिट कर सकते हैं। तो ये मेरी एडवाइस होगी जो तारीख वतन इस मुल्क में आना चाह रहे हैं कि आप जनरेशन जो यहाँ पे हैं उनसे एडवाइस लें।
एमजे खान साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे?
जो भी अमेरिका आ रहा है उसको देख रहे हैं कि अमेरिका में एक तो डेमोक्रेसी बड़ी मैच्योर है, बड़ी मजबूत है, और दूसरी तरफ ये कि अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और अपने उसूलों के ऊपर और कानून की पाबंदी रखते हुए यहाँ पे रहना चाहते हैं तो इस कंट्री में बहुत अपॉर्चुनिटीज है हर एक के लिए। तालीम की अपॉर्चुनिटी है, पर्सनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, प्रोफेशन की अपॉर्चुनिटी है, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, यू नो मुस्तकबिल को कामयाब बनाने की अपॉर्चुनिटी है। तो अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और जो भी यहाँ पे आए वो मैं समझता हूँ बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो जिनको अमेरिका में आने का मौका मिल जाता है।
बहुत खूबसूरत गुफ्तगू पर हम इस प्रोग्राम को समेटते हैं और आज की राउंड टेबल को समेटते हैं। आज हमने बात की अमरीका में आबाद तारकीन वतन की और खासतौर पर हमने पाकिस्तानी अमरीकी तारकीन वतन की बात की और साउथ एशियन भी इसी जुमरे में आते हैं जिन पर हमने गुफ्तगू की। और हमने ये वाजे किया अपने अपने पैनल के थ्रू कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी और तारकीन वतन आबाद हैं वो किस तरह यहाँ पर आकर स्ट्रगल करते हैं और यहाँ क्या मौाक़े हैं जो उनको अवेलेबल होते हैं, जिनको अवेल करके वो अपनी ज़िंदगियों में भी तब्दीलियाँ लाते हैं और अपने इस मुल्क को भी अपने सलाहियतों से फैजयाब करते हैं और अपने आबाई मुल्कों को भी पे बैक करते हैं और उनके लिए भी जो कुछ वो कर सकते हैं वो ज़रूर करते हैं। तो अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आज की राउंड टेबल समेटते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे सिएटल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ के प्रोफेसर ऑफ लॉ और डायरेक्टर सेंटर फॉर ग्लोबल जस्टिस प्रोफेसर तैयब महमूद। हमारे साथ थे ह्यूस्टन टेक्सास के एक रिपब्लिकन और साबिक काउंसिल मेंबर और इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन के साबिक सदर मसरूर जावेद खान या एमजे खान। और हमारे साथ थे नॉर्थ अमेरिका में पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स की तंजीम ओपन के शिकागो चैप्टर के सदर और एक डेमोक्रेट हारिस अहमद। और हमारे साथ मौजूद थी नॉर्थ कैरोलिना से एक डेटा साइंटिस्ट غزالہ صادق. اپنے سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کی راؤنڈ ٹیبل کو سمیٹتے ہیں. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی